Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
एक बहन ने कहा था, सज्जन के बहन ने कहा, वो भी सज्जन ही है, एक बहन ने कहा था कि महाराज, आप लोग कहते हो कि हम सुनते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं, हर श्लोक का उपनिषद के किसी न किसी उपनिषद के मंत्रों से संबंध है। गीता के जितने भी श्लोक हैं 18 अध्याय में 750 जो श्लोक हैं, हर श्लोक का उपनिषद के मंत्रों के साथ संबंध है। तो कृपा करके मुझे गीता के कौन से श्लोक का, कौन से उपनिषद के, कौन से मंत्र के साथ संबंध है, वो जरा टिक लगाकर मुझे लिखकर बता दो। तो हमने कहा ये तो बड़ा काम है, ये तो जरा फुर्सत में ही होने वाला काम है ना, क्योंकि सारा उपनिषद का अध्ययन करना पड़ेगा, आगे गीता रखना होगा, उसके अर्थ के आधार पर फिर उपनिषद के मंत्रों को चिंतन करना पड़ेगा, और इस मंत्र के साथ इसका संबंध है। हो सकता है एक ही श्लोक में अलग अलग दो उपनिषद के अलग अलग दो तीन मंत्रों का संबंध हो सकता है, है? और जैसे कि ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा या ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, ये कठोपनिषद किस मंत्र के साथ संबंध है, ऐसे ऐसे, या द्वासुपर्ण सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्य जाते, इस मंत्र का भी गीता के ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा के साथ संबंध है, क्योंकि गीता के इस 15वें अध्याय में भी संसार और शरीर को एक वृक्ष के रूपक से रूपित किया है, और इस उपनिषद ने भी संसार और शरीर को एक वृक्ष के रूपक से रूपित किया है, और यही दिखाया है गीता में भी कि इस संसार वृक्ष या शरीर रूपी वृक्ष में पक्षी रहते हैं, कर्म फलों को भोगते हैं। इसी प्रकार से उपनिषद ने भी यही कहा कि शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी भोगता है, दूसरा पक्षी देखता है। अब विचार करो, संसार में खाने वाला सुखी होगा कि देखने वाला सुखी होगा? खाने वाला सुखी होता है? खाने वाला सुखी होता है संसार में, देखने वाला सुखी होता है? यही तो संसार और उपनिषद ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, इसलिए आपको उपनिषद समझ में थोड़ी कठिनाई आती है। संसार जैसा है वैसे ही उपनिषद बात कर देवे तो फिर, क्योंकि आप संसार को देख ही रहे हैं, तो फिर संसार को जैसा देख रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसी तरह उपनिषद व्याख्या कर देवे तो आपको बात फट से समझ में आ जाती है, और संसार जैसे अपने अनुभव किया है वैसे बात न करके उसके ठीक विपरीत बात कर देते हैं उपनिषद में, तो फिर आपको उपनिषद समझ में नहीं आती है। कारण क्या है? आप कहते हैं खाने वाला और देखने वाले में खाने वाला आनंदित होगा कि देखने वाला आनंदित होगा? आप कहते हैं खाने वाला, आनंद किसको आएगा, खाने वाले को आएगा कि देखने वाले को आएगा? आपका अनुभव तो ये कह रहा है कि खाने वाले को आनंद आता है, है ना? और उपनिषद ये कह रही है कि देखने वाले को आनंद आता है, खाने वाले को आनंद नहीं आता। अब यदि देखने वाले को आनंद आता तो कोई समस्या ही नहीं थी, है ना? संसार में जितने भी गरीब हैं उनको सब गिरगांव चौपाटी में बुला लो, फिर वहां एक पार्टी करके अपने खाते रहो, उनको कहो कि देख तुम लोग देखते रहो, जब उनको आनंद आ जाएगा। है? देखने वाले को आनंद आता होता तो होटलों के आगे, है? बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटलों के आगे सब गरीबों को ले जाके खड़ा कर दो, ये जो आते हैं खाते हैं उनको देखकर तुम आनंदित हो जाओ, तो होता तो है ही नहीं। देखने वाले को क्या आनंद आता है व्यवहार में? और उपनिषद का कहना है देखने वाले को आनंद आता है, खाने वाला दुखी होता है, देखने वाला दुखी नहीं होता। बड़ा विचित्र बात है। द्वौ सुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम, संसार और शरीर को वृक्ष कहा। वृक्ष शब्द बना है, छेदनार्थक वृक्ष शब्द है। वृक्ष धातु छेदनार्थक है, इसको छेदन करके ही इसका नाश किया जा सकता है। जब तक तुम स्वयं इसको नहीं काटोगे तब तक इसका नाश नहीं होने वाला है, अन्यथा छेदन भी ठीक से छेदन, काटना भी ठीक से काटना होगा। हमको याद आ गया, इस प्रसंग से एक दृष्टांत याद आ गया। दिल्ली में अपना गुरु आश्रम है, सिविल लाइंस में विश्वनाथ संन्यास आश्रम। बहुत पहले हम पहली बार कथा करने के लिए गए, वहां प्रवचन के लिए गए, तो वहां बहुत पुराना आश्रम है, पुराना मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के जो शिखर बनी हुई है उस शिखर में एक पीपल का पौधा उग आया। बात समझ रहे ना, एक पीपल का पौधा वहां पैदा हो गया, उग आ गया। उसको देखकर वहां का व्यवस्थापक, जो हम आश्रम में कोठारी बोलते हैं, जो व्यवस्थापक है, उन्होंने नौकर को कहा कि अरे वो देखो पौधा उग आया, उसको निकालो, उखाड़ो उसको। नौकर शीणी लगा लिया और गया और उसको उखाड़ा। तो उखड़ तो नहीं गया, जड़ से उखड़ तो नहीं गया, वो तो टूट गया बीच में से। टूट गया तो टूट गया, छोड़ दिया। दूसरे साल फिर गया तो फिर उतने बड़ा पौधा हो गया वहां। तो हमने उनको कहा कि देखो भाई पिछले बार भी इतने बड़ा पौधा था, फिर वहां बोला पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो। बोले हमने तो पिछली बार उसको उखाड़ा था। अरे भाई उखाड़ा होता तो फिर कहां से पैदा हुआ। फिर उन्होंने नौकरों को कहा कि अरे जाओ उखाड़ो, वो गया उसको खींचा तो वही बीच में टूट गया। तो हर बार उखाड़ते हैं लेकिन हर बार वह उगाता है। परिणाम ये हुआ कि ऊपर जो बढ़ रहा है उसको तो वो तोड़ते जाते हैं लेकिन उसका जो एक नियम है जड़, वो हर साल नीचे भी तो जाता रहा है। तो अंदर ही अंदर उसके जड़े जितने फैलने लग गई, ऊपर तो कुछ हर साल उसको उखाड़ते हैं इसलिए इतना बड़ा पेड़ नहीं हुआ, लेकिन नीचे का जो जड़ है तो वो अपना काम तो कर ही रहा था। तो बाहर से अंदर उसके जड़ों ने इतना काम किया कि वो नीचे से पूरा जो प्लस्तर था, सीमेंट था, सब पांच छह साल में तो गिरने लग गया और बारिश में सारा पानी चूहने लग गया। अब क्या करें भाई, क्योंकि अब उसको पूरे के पूरे जड़ को निकालना हो तो पूरे मंदिर को ही तोड़ना पड़ेगा, कम से कम उतना हिस्सा तो तोड़ना ही पड़ेगा। जब तोड़ोगे तब जाकर उसके जड़ निकलेंगे, जड़ सहित जब उसको निकाला जाएगा तब जाकर समस्या का समाधान हो पाएगा, अन्यथा जड़ तो वहीं रह जाएंगे। तो समस्या तो यथावत ही है, क्या करना चाहिए। और मंदिर को तोड़े तो कोई साधारण खेल नहीं है, तोड़ो फिर बनाओ, फिर वो भी कोई ऐसा पाट सीलिंग नहीं है, वो डोम टाइप का सीलिंग है, उसी प्रकार के बनाने के लिए बड़ा बजट चाहिए, बड़ी समस्या चाहिए। तो इतनी में अब कैसे इस समस्या का समाधान करें। तो एक पुराने अनुभवी कोई वृद्ध व्यक्ति सत्संगी थे, उन्होंने ये समस्या सुन ली। उन्होंने कहा कि महाराज ये कोई बड़ी समस्या नहीं, इसको तो आसान से इसको नष्ट किया जा सकता है। बोले कैसे महाराज। देखो वृद्धों का अनुभव अपनी जगह है, इसलिए वृद्धों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका अनुभव बड़े अपने काम आते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, चूना और हींग दोनों को मिलाकर, चूना और हींग दोनों को समान मिला लो और ऊपर से जो अंकुर आया उसको खींच लो, वो टूट जाएगा, जहां से वो टूटा है वहीं चूना और हींग डाल दो, बस ये खत्म हो जाएगा। जड़ जो है अपने आप सड़कर चले जाएंगे, फिर दोबारे वहां अंकुर पैदा नहीं होने वाला है। और ऐसे ही क्या, चूना हींग मिला के उसमें डाल दिया, दूसरे साल तो वो पौधा उत्पन्न नहीं हुआ। तो जो जड़ उसमें थे वे सब सड़ गए। सड़े तो फिर उसके बाद सीमेंट लगाकर ऊपर से बंद कर दिया तो समाधान हो गए, अब पानी नहीं चूता है, जड़ वहीं सड़ गए। ये दृष्टांत हम क्यों सुना रहे हैं आपको? आप हर बार संसार वृक्ष को उखाड़ने की कोशिश करते हो लेकिन जड़ से तो उखाड़ते नहीं हो, जड़ से नहीं उखाड़ते हो, इसलिए समस्या यथावत रह जाती है। फिर दूसरी बार देखो वही समस्या, फिर दूसरी बार देखो वही समस्या है, क्योंकि जड़ से तो जाता नहीं है। और चुना और हिंग डालो तब नहीं ये उखड़ेगा। ये चुना हिंग क्या है? चुना है यही भक्ति है, हिंग है यही ज्ञान है। ज्ञान भक्ति के माध्यम से उत्पन्न शुद्ध अंतकरण में जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान का जो हिंग डालोगे तब फिर संसार वृक्ष अपने आप सड़ जाएगा। ये तो आप करते नहीं हो, चुना हिंग तो मिलाते नहीं हो, खाली ऊपर से अंकुर हो गए। अरे इसने समस्या किया करते हो, उसको एक फिर दूसरी तरफ से पैदा होता है, फिर उसको उखाड़ते हो तीसरी तरफ से पैदा होता है। जड़ जब तक रहेगा तब तक संसार वृक्ष तो कहीं न कहीं से ये उगता ही रहेगा और आपके सामने दिखता ही रहेगा। दौ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, वृक्ष शब्द का अर्थ होता है काट कर ही जिसको नष्ट किया जा सके उसको वृक्ष। यदि तुम नहीं काटोगे तो हजारों वर्ष तक ये खड़ा रहेगा। आप लोगों ने भरूच के आगे कबीर वट देखा है ना? हाँ, भरूच के आगे है कबीर वट, नारेश्वर और भरूच के बीच में है। हम भी पहुंचे थे दर्शन करने के लिए कबीर वट का। वो वट कब का है तो पता नहीं कब का है, 600 वर्ष, 550-600 वर्ष तो कबीर का हुआ है। कबीर उसी बड़ वृक्ष के नीचे साधना करके कबीर कबीर हुए हैं, उससे पहले भी वह बड़ वृक्ष वैसे ही था। तो कब का है, कब का है, उखड़ता नहीं है वो। और आप इलाहाबाद चले जाओ वहां पर भी एक बड़ वृक्ष है, वो जो किला है अशोक का किला उसके अंदर सत्ययुग का ये बट वृक्ष है करके दिखाते हो, बताते हैं बताने वाले। टिकट लेकर वहां जाना पड़ता है देखने के लिए, कुछ नहीं, सुबह एक बड़ा सा बट का शाखा काट कर वो चौकीदार लाकर वहां रख देता है और कह देता है कि ये सदियों का सत्ययुग का है, किले के अंदर है, जाओ तो देख ले। और टिकट लेकर लेते हैं उसको देखने के लिए, इसलिए पेड़ हरा रहता है। फिर दूसरे दिन वो गेट खोलने से पहले एक बड़ा शाखा काट के वहां रख देगा, फिर कहेगा देखो सत्ययुग से इतना ही है, बढ़ता भी नहीं है, हरा है, घटता भी नहीं है, मरता भी नहीं है। सब लोग आश्चर्य होते हैं, गांव के वाले, हमने ये देखा ये कुछ नहीं है, तो सब चौकीदार की बदमाशी है। अभिप्राय यह है संसार वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाएगा, इस भरोसे में रहोगे ये अपने आप नष्ट होने वाला नहीं है। औषधि और वृक्ष ये दो शब्दों की परिभाषा की गई है। जो पैदा हो और फल देकर स्वयं नष्ट हो जावे उसको तो वनस्पति औषधि की कोटि में लेते हैं। जो एक बार फल देवे फिर भी रहे, फिर फल देवे फिर रहे, तो सदियों रहे, उसको वृक्ष कहते हैं। उसको नाश करने के लिए काटना ही पड़ेगा। तो संसार एक पूरा का पूरा वृक्ष है, तो इसको तुम कैसे काटोगे? कितना बड़ा हथियार चाहिए इसको? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और हथियारों से ये कटने वाला नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल हथियार हमने बना दी है। उस हथियार का तुम प्रयोग कर लोगे तो संसार वृक्ष कट जाएगा। कट गया इतनी से हम संतुष्ट नहीं रहना, कटेगा फिर उसमें से और आ जाएंगे, इसलिए इसके जड़ से ही उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। न रूप मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न जसम प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। हे अर्जुन, ये संसार वृक्ष जिसका नाम अस्वत्थ है, इसका रूप नहीं है, न रूप मस्येह, संसार वृक्ष को कहीं वृक्ष के रूप में खोजने जाओगे तो नहीं मिलने वाला है। न रूपमस्य तथा अपि उपलभ्यते, रूप खोजने जाओ तो नहीं मिलता। जैसे इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बरसात में होती है, है? दूर से देखो इंद्रधनुष सप्तरंगी क्या सुंदर गोलाई में दिखता है, और जिस रूप में दिख रहा है वो इतना सुंदर गेट नुमा इंद्रधनुष, जरा नजदीक जाकर देखें तो वहां पहुंच जाओगे तो नहीं दिखेगा। नरूपम अस्य यह उपलभ्यते तथा अपि उपलभ्यते, नान्तो न चादिर, कहां से शुरू हुआ है और कहां समाप्त हुआ है इसका आदि का पता नहीं और अंत का भी पता नहीं है। नान्तो न चादिर, इसलिए तो कहा है कि अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भावि प्रजा सृजमाना स्वरूपा नान्त न आदि, इसका आदि का कोई पता ही नहीं है इसलिए इसको कहा अजा। नान्तो न चादिर न तसम प्रतिष्ठा, इसके अपनी संप्रतिष्ठा नहीं है, ये खुद अपने आधार में नहीं टिका हुआ है, अपने भूतों पर ये खड़ा नहीं है संसार वृक्ष, किसी और के आधार पर खड़ा है। न तसम प्रतिष्ठा, थोड़ा सा यदि तुम युक्ति लगाओ तो हिला सकते हो, उखाड़ सकते हो, लेकिन यदि युक्ति नहीं लगाओगे तो ये फिर चाहे कितने ही प्रयत्न कर लो खाली प्रयत्न से यह हिलने वाला नहीं। संसार वृक्ष युक्ति से हिलता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा, ऐसे ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, उन पत्थरों को यदि तुम उठाने लगो तो दो चार आदमी लगे तो भी नहीं उठ सकता है वो, हाथ से ऐसे हाथ से उठाने लगो तो नहीं उठ सकता। और वहां लिखा हुआ है दो आदमी चार उंगली से उसको उठा सकता है, दो आदमी अपने दो हाथ के ऐसे उंगली लगाएगा तो वो उठ जाएगा, उठता भी है, और ऐसे हाथ से उठाने लगो तो नहीं उठेगा, उंगली से उठ जाता है और हाथ से नहीं उठता है। तो उसको वो एंगल है किस किस जगह पर वो उंगली लगाना है, तो वहां लगाओगे तो वो उठ जाएगा नहीं तो नहीं उठेगा, ऐसे कई जगह है। तो इसको युक्ति से ही लाया जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, एक ही संसार वृक्ष को उखाड़ने की उपाय, काटने का एक ही उपाय है, वह असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ही इस वृक्ष का उच्छेद किया जा सकता है। असंग रूपी हथियार से यह संसार वृक्ष नष्ट हो सकता है, अन्यथा इस संसार वृक्ष नष्ट नहीं होगा। चित्वा ज्ञानासिना मसत, गीता में आया है, हे भगवान इस संसार वृक्ष को तो ज्ञान रूपी तलवार से काटना चाहिए, काटा जा सकता है। तो वही बात यहां कहते, समानम वृक्षम परिस्वस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती, ये दोनों पक्षी उसी पेड़ में रहते हैं, भूख लगेगी तो ये खाना खाने के लिए कहां जाते हैं भाई? बोले भाई ये पेड़ फल वाला पेड़ है इसीलिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, फल न लगने वाले पेड़ में घोंसला बनाकर बैठे हुए पक्षी को तो दूर दूर फल खाने के लिए जाना पड़ेगा, ये पेड़ इतना अच्छा है कि यहीं घोंसला बना लो, यहीं रह लो और यहीं फल लगते हैं इसलिए यहीं फल खा लो, तो कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है इन पक्षियों को फल खाने के लिए। ये अफला वृक्ष नहीं है, ये सफला वृक्ष है ये, हाँ। कोई कोई पेड़ होते हैं पौधा लगाओ फलता ही नहीं, हाँ। बनारस में हमारा गुरु का आश्रम है दक्षिणामूर्ति मठ, हम लोग सब वहीं पढ़ते हैं, गुरुकुल वहीं पढ़े हैं, सभी महात्मा यहां आने वाले प्राय सभी महात्मा दक्षिणामूर्ति के ही विद्यार्थी रहे हैं, चाहे विद्यानंद जी कहो, है, चाहे मोहनान जी कहो, चाहे माधवानंद कहो, चाहे आत्मानंद कहो, चाहे रामानंद कहो, चाहे जो, सब दक्षिणामूर्ति के विद्यार्थी हैं, वहीं पढ़े हैं। वहां एक नारियल का पेड़ किसी ने लगा दिया, वो पेड़ इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि वो फिर फलता ही नहीं नारियल। तो किसी ने आकर कहा कि ये ऐसे नहीं फलने वाला है, फलेगा लेकिन इसको फलने लायक बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं फलने वाला है, फिर कैसे फलेगा ये? तो बोले इसके जड़ में नमक डाल दो, नमक का थोड़ा पानी में घोलो और वो नमक का पानी डाल दो, थोड़ा दूर दूर इसको गड्ढा बनाकर थोड़ा नमक डाल के पानी डाल दो, फिर फैलेगा। तो थोड़ा नमक डाला और पानी डाला, दूसरे साल फैलने लग गया वो है। उसको खारा पानी चाहिए ना नारियल को। अब वहां बनारस में तो खारा पानी मिलने वाला नहीं है, समुद्र के किनारे होता तो खारा पानी, या खारा पानी नहीं हो तो खारा हवा तो मिलता उसको, वहां बनारस में कहां से खारा हवा मिलेगा? तो खारे हवा से ही हुआ पानी से वो फलीभूत होता है। तो ये किया तो उसको ज्यादा ऊर्जा मिल गया, तो वो फल गया। अश्वत्थमेनम सुवीरोड़मूल, इसी तरह यहां कहा तयोरण्य पिप्पलम स्वादवत्ती। दो पक्षियों में से एक पक्षी पिप्पलम स्वादवत्ती, इससे क्या सिद्ध हुआ? गीता में जो अश्वत्थ कहा, जिस वृक्ष का नाम अश्वत्थ वृक्ष कहा था, उसी को ये श्वेताश्वतर उपनिषद ने पिप्पलम कहा। और शब्दकोश में यही है, पिप्पल को यदि संस्कृत शब्दकोश में संस्कृत नाम खोजने जाओगे तो अश्वत्थ, और संस्कृत का जो अश्वत्थ है उसको हिंदी के डिक्शनरी खोजने जाओ, हिंदी में इसका क्या नाम है, तो बोले पिप्पल है। तो पिप्पल और अश्वत्थ एक ही वृक्ष का नाम है। और यहां पिप्पलम स्वादवत्ती, पिप्पल के फल को बड़े स्वाद पूर्वक रुचि पूर्वक भोगता है, क्योंकि पिप्पल के फल पेड़ में तो फल तो लगते ही हैं, है? और एक तो ऋषि हुए हैं, वही फल खा खा कर अपनी ब्रह्म साधना करते थे, उनका नाम क्या है? पिप्पलाद, प्रश्न उपनिषद के आचार्य पिप्पलाद, पिप्पल के फलों को खाकर ब्रह्म विचार वेदांत विचार करते थे। वो कोई तिवारी स्वीट हाउस का मिठाई नहीं खाते थे। कहां है तिवारी स्वीट हाउस? दादरे में, दादर में है कहते हैं, ऑपेरे हाउस में भी आ गए, पहले तो दादर में था कहते हैं तिवारी स्वीट हाउस। उस मिठाई खाकर वो वेदांत साधना नहीं करते थे, वो पिप्पलम स्वादवत्ती, पिप्पल के फल को खाकर ब्रह्म साधना करते थे, वेदांत चिंतन करते थे। ये जीव भी रहता तो उसी पिप्पल के ही वृक्ष में है, अश्वत्थ वृक्ष में रहता है। अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहा इस शरीर को? पिप्पल का पेड़ क्यों कहा? पिप्पल का अर्थ क्या हुआ? अश्वत्थ। ये शरीर को क्या कहा? अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ का अर्थ क्या हुआ? न स्व काले, यानी स्व माने कल, आने वाला कल, वो स्व कहते हैं संस्कृत भाषा में, और गया हुआ जो कल है उसको क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? बोलो, आपको पता है? हैं? जो कल गया उस कल को, जो आने वाला कल, दोनों जगह कल कल कहोगे आप, तो आने वाले दिन को भी कल और गया हुआ दिन को भी कल है, परंतु हमारे संस्कृत में ऐसा नहीं है। गया हुआ दिन को यह कहते हैं और आने वाले दिन को स्व कहते हैं। गया हुआ तो गया, अब आने वाला जो दिन है वो क्या है? स्व। और स्व में वह रहे या न रहे कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अस्व, अस्वस्थ। कल के जो समय आएगा, काल आएगा, दिन आएगा, उसमें इसका अस्तित्व उपलब्धि हो या न हो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अस्वस्थ, अस्वस्थ। स्व कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा, 2007 तक तो स्वामी विद्यानंद जी का पेड़ था, है ना? और 2008 में विद्यानंद जी का पेड़ ढह गया कि नहीं बोलो? 2007 में स्वामी विद्यानंद जी का पेड़ था कि नहीं?
हाँ।
था। और 2008 में
नहीं,
फिर ढह गया। स्व अब बोलो, 2009 में पता नहीं किसका पेड़ ढह जाएगा, 2010 में किसका ढह जाएगा? ये सब स्व है, आने वाले हैं, आने वाले दिनों में इनका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। इन पेड़ यहां जो दिख रहे हैं, कितने पेड़ ढह जाएंगे, कितने पेड़ रह जाएंगे? अस्वत्थ क्या गारंटी है भाई? और भाष्यकार ने तो यहां तक व्याख्या की है, स्वस्थ। स्व शब्द का अर्थ फिर घोड़ा भी होता है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, स्व शब्द का अर्थ होता है कुत्ता, स्वान स्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, अश्वत्थ का अर्थ क्या हुआ? घोड़ा जहां भी जब भी खड़ा रहेगा वो चारों पांवों से खड़ा नहीं रहता। असली घोड़ा होगा तो, नंबर वन घोड़ा होगा तो वो चार पांव से एक ही साथ खड़ा नहीं रहता है, तीन पांव से खड़ा रहता है, एक पांव हमेशा उठाए रखता है। और दूसरी बात है, घोड़ा इतना चंचल शरीर वाला है, थोड़ा सा हवा भी उसके शरीर में पहुंच जाए तो पूरा का पूरा शरीर उसके कंपायमान हो जाता है, स्पंदित हो जाता है। एक मक्खी एक जगह क्या बैठी कि पूरा शरीर उसका स्पंदित हो जाता है। इस सारी बात से क्या सिद्ध होता है? ये जगत बहुत चंचल है, अस्थिर है, बहुत स्पंदित है, चंचल है, चलायमान है। कल तक रहेगा या नहीं रहेगा ये ठिकाना नहीं, जब तक रहेगा तब तक वो शांत से रह जाए ये भी भरोसा नहीं। घोड़े के शरीर की तरह वो चलायमान है, अस्थिर है। इस जगत में ज्यादा भरोसा नहीं करना, स्वयं अपने स्वरूप में भरोसा कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जगत संसार में भरोसा नहीं करना, शरीर में भरोसा नहीं करना। एक व्यक्ति आए मेरे से, उन्होंने हमसे कहा, बहुत पहले की बात है, महाराज क्या बताएं, मेरा ही खास अपने ही मित्र ने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। मित्र ने कहा, तो सज्जन ने कहा कि महाराज मेरे खास मित्र ने, जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया था, उस खास मित्र ने ही मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमने कहा क्या हुआ? बोले उसने कहा कि हम दोनों मिलकर थोड़ा बिजनेस करेंगे, तो 10 लाख हमने भी लगा ली, उसने 10 लाख लगा ली, और वो सब काम धंधा फिर हमने उसी के जिम्मा लगा दिया। वो तो मेरा मित्र है तो हमको क्या धोखा देगा भाई मित्र, हमने सब उसको लगा दिया, पैसा लगा दिया और काम धंधा उसको लगा दिया। एक दो साल तो कुछ कमाई हमको देता रहा कि ये उसका इनकम है, इसका प्रोफिट है, ये बचत है, ये तुमको देता रहा। 2-4 साल के बाद तो वो कुछ भी नहीं दिया, जो मेरा 10 लाख था वो भी सब खत्म हो गया, डूब गया। मैं अब तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया उसने, महाराज मैं क्या करूं? तो मजाक, हमारे तो सहेली है ये, मजाक किया है। हमने कहा अभी तुमको कुछ धोखा नहीं दिया, उसने तो कोई धोखा नहीं दिया है, उसने जो धोखा दिया है कम से कम उसके विरोध में उसने मुझे धोखा दिया कहने लायक छोड़ा है तुमको, लेकिन एक तुम्हारा मित्र एक और है ऐसा धोखा देगा तुम इतना कहने लायक भी नहीं रहोगे, इससे बढ़कर और बड़ा धोखा होने वाला है तुम्हारे जीवन में। बोले महाराज वो कैसे? बोले तुम अभी तो श्वास पर भरोसा कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं बोलो? ये तुम्हारा मित्र है, पूरे भरोसा कर रहे हो कि नहीं? और ये एक दिन ऐसा धोखा देकर जाएगा कि इसने धोखा दिया ये कहने लायक रहोगे तुम। इसने तो कुछ नहीं धोखा दिया है, वो तो 10 लाख लेके गया, कुछ नहीं। शिकायत करने लायक तो तुम बच गए ना अभी, अभी तो इसको तो क्या धोखा मानोगे? हम इसको धोखा नहीं मानते। सबसे बड़ा धोखा तो तुम्हें तब होने वाला है, अभी और होने वाला है, सावधान। क्या हमारा तुम्हारा ये श्वास जिस पर तुम पूरे भरोसा कर रहे हो वो एक दिन ऐसा छोड़कर जाएगा कि इसने मुझे धोखा दिया कहने लायक भी नहीं रहोगे। वो तो घबरा गया भाई, है? है? इसीलिए कहा योग वासिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रतिश्वास सविश्वासम रामम स्मर दिने दिने पुनः श्वास न विश्वासम कदा रुद्धो भविष्यति आगमिष्यति वा नवा। देख लो, यदि भरोसा करनी हो तो अपने पर ही भरोसा करो, राम पर भरोसा करो, ब्रह्म पर भरोसा करो, परमात्मा पर भरोसा करो, उसके अलावा ये जगत संसार क्योंकि अस्वत्ता है, अस्थिर है, चंचल है, इस पर भरोसा नहीं करना। किस समय यह चला जाए, प्रतिश्वास सविश्वासम रामम स्मर दिने दिने, रामम स्मर प्रतिश्वास रामम स्मर पुनः श्वासे न विश्वासम, उस श्वास में तुम भरोसा नहीं करना। कदा रुद्धो भविष्यति, बाहर गया हुआ श्वास वापस नहीं आया तो तुम क्या कर लोगे? है? कर लो, क्या कर लोगे तुम? है कोई उपाय कुछ करने की, शिकायत करने के उपाय है? कदा रुद्धो, इसीलिए भरोसा तो अपने पर एक करना। अनसन नन्नो अभिचाक सीति ही, दूसरा जो पक्षी है, पहला पक्षी तो संसार में कर्म करता है और इसी भरोसे से कि इस कर्म का फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, मैं बाद में बहुत सुखी होऊंगा, और जब उसके अनुकूल फल आता है बड़े आनंद से भोगता है, जब उसके प्रतिकूल हो जाता है तब फिर दुखी होता है, रोने लगता है। और दूसरा जो पक्षी है वह करता नहीं है तो फलों पर आसक्ति नहीं है, फलों के आसक्ति न होने के कारण वह भोगता नहीं है, भोगता नहीं है तो खट्टे और मीठे भी कुछ नहीं। भोक्ता बनोगे तो कभी बढ़िया आम खाने को मिलेगा, कभी खट्टे आम भी खाना पड़ेगा। जब बढ़िया आम मिलता है तो चेहरा खिल जाता है, वाह क्या बढ़िया आम है, और फिर जब उसके साथ साथ खट्टा आ जाता है तो आपके चेहरा बिगड़ जाता है, कहते हैं कि मुझे धोखा दिया उसने। अरे किसने धोखा दिया? तुम्हारे कर्म का फल से तुम्हारे सामने खट्टा आम आया, एक ही दुकान से खरीदे हो, एक अच्छा आना और दूसरा खट्टे आने में क्या उस दुकानदार की बदनीयति है? एक ही पेड़ का फल है, एक ही पेटी का, एक ही बॉक्स का, एक ही दुकान का, तो एक बढ़िया आना और दूसरा सड़ा हुआ आना, एक बढ़िया आना और दूसरा खट्टा आना, ये किसी और की नियत नहीं है, ये खुद अपना ही प्रारब्ध है। हाँ, इसलिए जब अच्छा लगता है तो प्रसन्नता, जब खराब भोगते हैं तो दुख, जब तुम प्रसन्नता करते हो तो दुख भी तुम ही भोगो। हमारी एक आदत पड़ गई है कि सुख हम भोगें प्रसन्नता से, दुख हम न भोगें। तो कर्म किए तुम तो भोगे का कौन? और दूसरा क्या, अनशन नन्न अभिचाकसिति, वो भोगता नहीं, केवल देखता रहता है, उसको कोई दुख नहीं है, बड़े आनंद का अनुभव करता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।